चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 9 श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों मगरमच्छों के चुंगल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। उन तीर्थ स्थानों में जाने के बहाने उन्होंने हजारों निवासियों का हृदय परिवर्तन किया और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को अपने स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया उनका क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि महाप्रभु ने आते जाते दाहिने तथा बाएं के सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। क्योंकि इन सारे स्थानों का क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतएव मैं नाम के लिए ही उनका वर्णन करूंगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए उनका हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे, कुछ तो ज्ञानी थे और कुछ सकाम कर्मी, किंतु अभक्तों की संख्या अपार थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इन सारे लोगों ने अपने अपने मत त्याग दिए और वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त बन गए। उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के अनुयायी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। हे रघुवंशी रामचंद्र, कृपया आप मेरी रक्षा करें। हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण, कृपया आप मेरी रक्षा करें। मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी राम राघव मंत्र का कीर्तन करते थे। इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिका अर्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने सारे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित भी किया। वहां पर उन्होंने भगवान राम के दास महादेव शिव का दर्शन किया। इसके बाद वे अहोबल नरसिंह देखने गए। अहोबल नरसिंह अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की स्तुति की। फिर वे सिद्धवट गए, जहां उन्होंने सीता देवी के स्वामी रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। महाप्रभु ने रघुवंशी भगवान रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद उनको नमस्कार किया और स्तुति की। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। वह ब्राह्मण निरंतर पवित्र राम नाम का उच्चारण करता था। वह ब्राह्मण राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करता था। उस दिन भगवान चैतन्य वहीं रहे और उसके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह उस ब्राह्मण पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वे त्रिमठ गए, जहां उन्होंने विष्णु के अर्चा विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया। त्रिविक्रम मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवट लौट आए, जहां वे पुनः उसी ब्राह्मण के घर गए जो अब निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर, मुझसे अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बतलाओ। पहले तो तुम भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे, तुम अब कृष्ण नाम का निरंतर जप क्यों करते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र के नाम का कीर्तन करता रहा हूँ, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया, तब से मेरी जिह्वा पर कृष्ण का पावन नाम ही बैठ गया है। क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूँ, अतः भगवान रामचंद्र का नाम दूर भाग गया है। मैं अपने बचपन से शास्त्रों से पवित्र नाम की महिमाओं का संग्रह करता रहा हूँ। परम सत्य राम कहलाता है, क्योंकि अध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातु ण प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनाती है, जिसका अर्थ है परम सत्य। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान हैं, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। शिव जी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम का केवल 1 बार उच्चारण करने से मिल जाता है। शास्त्रों के कथनानुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है, फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसका कारण सुने। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र रहे हैं और उनके पवित्र नाम के कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करता रहा हूँ। क्योंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इसलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दिन रात करता रहा। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भी आया, तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा का उदय हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय, आप वही भगवान कृष्ण स्वयं है, यह मेरा दृढ़ मत है। यह कह कर वो ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। उस ब्राह्मण पर कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन प्रस्थान किया और वृद्ध काशी आए, जहां उन्होंने शिव जी के मंदिर की मुलाकात ली। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्ध काशी से रवाना होकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया और उन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आए। इन लोगों की संख्या अनंत थी, अतएव उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। महाप्रभु का शरीर अत्यंत सुंदर था, साथ ही वे सदैव भगवान के प्रेम भाव से आविष्ट रहते थे। उनका दर्शन करने से ही सारे लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया। दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं। कुछ तार्किक होते हैं, जो गौतम या कणाद के अनुयायी होते हैं। कुछ जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अनुयायी होते हैं। कुछ शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के तथा कुछ कपिल के सांख्य दर्शन या पतंजलि के योग दर्शन के अनुयायी होते हैं। कुछ 20 शास्त्रों से युक्त समृद्धि शास्त्र का पालन करते हैं तथा अन्य लोग पुराण एवं तंत्र शास्त्र का पालन करते हैं। इस तरह दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ये विभिन्न शास्त्रों के अनुयायी अपने अपने शास्त्रों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब के मतों का खंडन किया और अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जो वेदों, वेदांत, ब्रह्म सूत्र तथा अचिंत्य भेदा वेद तत्व दर्शन पर आधारित था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारे दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत को वैष्णवों का देश बना दिया। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आए। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय का मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। वह बौद्धवाद के 9 दार्शनिक निष्कर्षों की स्थापना करने के उद्देश्य से महाप्रभु के समक्ष आया और इस प्रकार बोलने लगा। यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं और वैष्णवों को चाहिए कि उनका दर्शन न करें, किंतु उनके मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले। बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्यतः तर्क पर आश्रित हैं और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतएव वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर डाला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं अब एज वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए, किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। जब यह दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी उस स्थान में प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा लिया और उसे लेकर उड़ गया। वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर की आवाज हुई। थाली धातु की बनी थी, अतएव जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर लगी तो घाव हो गया। फलतः वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा करें, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें। तब महाप्रभु ने उन बौद्ध शिष्यों से कहा, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करो। इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे। जब सारे शिष्य कृष्ण राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। जब वह बौद्धाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए। तब शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। तिरुपति पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। वहां उन्होंने प्रार्थना की और रघुवंशी रामचंद्र के समक्ष नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहीं उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित हो उठता। फिर वे पाना नरसिंह मंदिर आए। महाप्रभु इतने दयामय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में आकर भगवान नरसिंह को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। लोग भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गए। शिवकांची आकर चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने अपने प्रभाव से सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया। तत्पश्चात महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण के अर्चा विग्रह देखे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया तथा अनेक स्तुतियां की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में दो दिन ठहरे तो उन्होंने बाबा वेश में नृत्य और कीर्तन किया। जब सारे लोगों ने उन्हें देखा तो वे कृष्ण भक्त बन गए। त्रिमलय देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिकाल हस्ती देखने गए। यहीं पर उन्होंने शिव जी को देखा और उन्हें सभी प्रकार से प्रणाम किया। पक्षी तीर्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का मंदिर देखा, तब वे वृद्ध कोल तीर्थ गए। वृद्ध कोल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेत वराह का मंदिर देखा। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिव जी के मंदिर गए, जहां अर्चा विग्रह को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। शियाली भैरवी दुर्गा देवी का अन्य रूप मंदिर देखने के बाद शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा। तब वे वेदा वन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा अर्चा विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। अमृत लिंग नामक शिव के अर्चा विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने शिव जी के सारे मंदिर देखे और शिव जी के भक्तों को वैष्णव बनाया। देवस्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा और वहां रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बातें की। ये वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं। कुंभकर्ण कपाल आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा, जहां पर शिव जी का मंदिर है। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पाप नाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्री रंग क्षेत्र पहुंचे। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर देखा और वहां स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाबा वेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए और उस जल को उनके परिवार के सारे लोगों ने पिया। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चातुर्मास का समय आ चुका है। वेंकट भट्ट ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और चातुर्मास भर मेरे घर पर रहें। आप भगवान कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपा करके मेरा उद्धार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुख पूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्री रंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन बाबा वेश में नाचते भी रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही उनका दुख तथा शोक भाग जाता था। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन करने आए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सब के सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी। श्री रंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया। यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चातुर्मास्य की अवधि बीत गई। श्री रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता था, किंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अशुद्ध उच्चारण करने से लोग कभी उसकी आलोचना करते और उस पर हंसते थे, किंतु वह उनकी कोई परवाह नहीं करता था। वह भगवत गीता का पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। भगवत गीता पढ़ते समय ब्राह्मण को दिव्य शारीरिक विकारों का अनुभव होता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों से आंसू आते रहते थे, उसका शरीर कांपने लगता था और वह पसीना पसीना हो जाता था। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे बाबा वेश में क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूँ, अतएव मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ और कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। वह ब्राह्मण कहता गया, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के चित्र को देखता हूँ तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो उठता हूँ। जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निसंदेह भगवत गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगा। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि आप ही वे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया। अतएव वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह से समझ सका। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भली भांति शिक्षा दी और उससे अनुरोध किया कि वह यह बात किसी से प्रकट नहीं करे कि वे साक्षात कृष्ण हैं। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त बन गया और चतुर्मास के 4 महीनों तक लगातार उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहते। इस तरह वे परम आनंदित थे। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्चा विग्रह की पूजा करता था। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी मजाक करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री हैं। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती हैं? लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि काल्य नाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निसंदेह हम नहीं जानते कि किस तरह काल्य नाग को ऐसा सुअवसर मिल सका। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप हैं, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य हैं। क्योंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। वेंकट भट्ट ने आगे बतलाया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं, अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों से हम ऐसा सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई, न ही स्वर्ग लोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए? चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों न हो, किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। बड़े बड़े ऋषि योगा अभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रह कर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं, किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वेंकट भट्ट ने तब स्वीकार किया, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ, अतएव मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। व्रज भूमि के निवासी कृष्ण को व्रज भूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र रूप में जानते हैं और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति व्रज भूमि के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भगवान को व्रज के दिव्य लोक में प्राप्त करता है। वहां पर वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया, यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों तपस्या में रत आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं है। वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने जो श्रुति गण कहलाते हैं गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। वैदिक स्रोतों के साकार अधिकारियों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया और व्रज भूमि में जन्म लिया। तब उन शरीरों में उन्हें भगवान की रास लीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया गया। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्ग लोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु न तो वे न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना चाहती थी, किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यास देव ने नायम सुखापो भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रास लीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति की अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव शिष्य करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की इस भ्रांति को समझ गए थे और इसे सुधारने के उद्देश्य से ही महाप्रभु इस प्रकार परिहास में इतना बोल रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट, अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुषावतार के अंश या कला हैं, किंतु कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा यह जगत व्याकुल होता है, तब तब हर युग में वे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। क्योंकि कृष्ण में ऐसे चार असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं हैं, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग चाहती हैं। तुमने सिद्धांत तत्व वेदे अपि से आरंभ होने वाला श्लोक सुनाया है। यह श्लोक ही साक्षी है कि कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दिव्य अनुभूति के अनुसार कृष्ण तथा नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है, फलतः वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निष्कर्ष है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकृष्ट करते हैं, किंतु भगवान नारायण गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाते। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। भगवान नारायण के विषय में क्या कहा जाए? गोपियों के साथ मजाक उड़ाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि कृष्ण ने नारायण का चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, किंतु वे गोपिकाओं की प्रेम दृष्टि को आकृष्ट नहीं कर सके। एक बार भगवान कृष्ण ने चतुर्भुजी नारायण का अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया, किंतु जब गोपियों ने उनके इस भव्य स्वरूप को देखा तो उनके भाव कुंठित हो गए। इसलिए विद्वान व्यक्ति भी गोपियों के उर्मिमय भावों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के आदि स्वरूप पर पूरी तरह स्थिर हैं। कृष्ण के साथ गोपियों का परम रस आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के गर्व को चूर्ण कर दिया, किंतु उन्हें पुनः प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे इस प्रकार बोले। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को यह कहकर सांत्वना दी, वास्तव में मैंने जो कुछ कहा वह परिहास था। अब तुम मुझसे शास्त्रों का निष्कर्ष सुन सकते हो
जिसमें हर वैष्णव भक्त का दृढ़ विश्वास होता है। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक रूप हैं। इसी प्रकार गोपियों तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी एक रूप हैं। लक्ष्मी जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण संग का आस्वादन करती हैं। हमें चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में भेदभाव न बरतें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। भगवान के दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं होता। विभिन्न भक्तों की विभिन्न अनुरक्तियों के कारण विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान एक हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए विविध रूपों में प्रकट होते हैं। जब वैदुर्य मणि अन्य वस्तुओं का स्पर्श करता है, तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त होता प्रतीत होता है। फलतः उसके रूप भी भिन्न लगने लगते हैं। इसी प्रकार भक्त के ध्यान भाव के अनुसार अच्युत भगवान एक होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तब वेंकट भट्ट ने कहा, मैं सामान्य पतित जीव हूँ, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान की लीलाएं अगाध हैं और मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कहते हैं, मैं उन्हें ही सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। अपनी अहेतुकी कृपा से आपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाई। भगवान के ऐश्वर्य गुण तथा रूप का कोई भी अंत नहीं पा सकता। अब मैं समझ सकता हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि पूजा है। आपने अहेतुकी कृपा करते हुए तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। यह कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा करते हुए उनका आलिंगन किया। जब चातुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांगी और श्री रंग का दर्शन करने के बाद दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ गए। वेंकट भट्ट घर लौटना नहीं चाहते थे, उनके साथ जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। महाप्रभु के चले जाने पर वेंकट भट्ट बेहोश होकर गिर पड़े। श्री रंग क्षेत्र में सचिव पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी थी। महाप्रभु ने ऋषभ पर्वत पहुंचकर भगवान नारायण का मंदिर देखा और नमस्कार किया, साथ ही विविध स्तुतियां की। परमानंदपुरी चातुर्मास में इसी ऋषभ पर्वत में रह रहे थे और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो वे तुरंत उन्हें मिलने गए। परमानंदपुरी से मिलने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका पाद स्पर्श करके सम्मान किया और परमानंदपुरी ने प्रेमवश महाप्रभु का आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी के साथ उसी ब्राह्मण के घर रुके जहाँ परमानंदपुरी रह रहे थे। दोनों ने कृष्ण कथा की चर्चा में 3 दिन बिताए। परमानंदपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि वे जगन्नाथपुरी स्थित पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे हैं। वहां भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद वे गंगा स्नान करने बंगाल जाएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपा करके जगन्नाथपुरी फिर आए, क्योंकि मैं शीघ्र ही रामेश्वर सेतु बंद से वहां लौट आऊंगा। मेरी इच्छा है कि आपके साथ रहूं। अतएव यदि आप जगन्नाथपुरी वापस आ सकें तो यह मेरे ऊपर महान कृपा होगी। परमानंदपुरी से इस तरह बातें करके महाप्रभु ने उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी और अत्यंत प्रसन्न चित्त से दक्षिण भारत के लिए रवाना हो गए। इस तरह परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शैल की ओर चल पड़े। इसी श्री शैल पर शिव जी तथा उनकी पत्नी दुर्गा ब्राह्मण वेश में रहते थे और जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा दी और एकांत में 3 दिन बिताने का आमंत्रण दिया। दोनों वहां पर साथ बैठकर गुप्त बातें करते रहे। शिवजी से वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु ने उनसे विदा ली और कामकोष्ठी पूरी गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कामकोष्ठी से दक्षिण मथुरा पहुंचे तो वहां उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महान भक्त था और श्री रामचंद्र भगवान के बारे में विशेषज्ञ अधिकारी था। वह भौतिक कार्यकलापों से सदा विरक्त रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी में स्नान करके उस ब्राह्मण के घर भोजन करने गए, किंतु उन्होंने देखा कि भोजन तैयार नहीं था, अभी ब्राह्मण ने उसे पकाया नहीं था। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, मुझे बताएं कि आपने भोजन क्यों नहीं पकाया है, अब तो दोपहर हो चुकी है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम वन में रहते हैं, इस समय हमें भोजन की सारी सामग्री वन में प्राप्त नहीं हो सकती। जब लक्ष्मण जंगल से साग सब्जियां फल तथा कंदमूल लाएंगे तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे के लगभग दोपहर का भोजन किया, किंतु दुखी होने के कारण वह ब्राह्मण उपवास पर रह गया। ब्राह्मण को उपवास किए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हे महाशय, सीता जी जग जननी और महालक्ष्मी हैं, उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है और मैं यह समाचार सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हूँ। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है किंतु प्राण निकल नहीं रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप अब इस तरह न सोचें, आप तो विद्वान पंडित हैं, आप इस समस्या पर विचार क्यों नहीं करते? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय एवं आध्यात्मिक है, उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी भौतिक प्राणी में वह शक्ति नहीं है। माता सीता को स्पर्श करने की तो बात ही दूर रही, भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता। रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था। जो ही रावण सीता जी के सम्मुख आया वे अप्रकट हो गई। उन्होंने रावण को धोखा देने के लिए ही अपना माया रूप भेजा। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति के सीमा क्षेत्र में नहीं रहती, यही वेदों और पुराणों का निर्णय है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया, मेरे वचनों में विश्वास रखें और अपने मन को इस कुभावना से बोझिल मत करें। यद्यपि वह ब्राह्मण उपवास कर रहा था, किंतु उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास था, अतएव उसने भोजन ग्रहण किया और इस तरह उसकी जान बच गई। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुर्वचन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। दुर्वचन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। इसी तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतु बंध रामेश्वर गए, जहां उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से वे रामेश्वर मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के संग में कुर्म पुराण सुना, जिसमें पतिव्रता स्त्री की कथा का आख्यान है। श्रीमती सीता देवी तीनों लोकों की माता तथा भगवान रामचंद्र की पत्नी हैं। वे पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। जब रावण माता सीता का हरण करने आया और उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने अग्नि देवता की शरण ग्रहण कर ली। अग्नि देव ने माता सीता के शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हो सकी। कुर्म पुराण में यह सुनकर कि किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। अग्निदेव वास्तविक सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला, तब उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माया सीता लाई गई, तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रकट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहानी सुनी, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें रामदास विप्र के शब्द याद आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना, तो उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण की अनुमति से कुर्म पुराण के इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। क्योंकि कुर्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतएव उसकी पांडुलिपि भी अत्यंत प्राचीन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष के मूल पन्ने रख लिए और नए पन्नों पर मूल की प्रतिलिपि करके कुर्म पुराण में लगा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौट कर दक्षिण मथुरा मदुरई आए और कुर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी। जब सीता जी ने अग्निदेव का आवाहन किया, तो वे सीता का माया रूप ले आए और 10 तीरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई। जब भगवान रामचंद्र ने सीता के शरीर की परीक्षा ली, तो वह माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय अग्नि देव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दी। रामदास विप्र कुर्म पुराण के मूल पन्ने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रुदन करने लगा। पांडुलिपि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए ब्राह्मण ने कहा, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उबारा है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन करें। कृपया मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सका। अब सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे हैं। यह कहकर उस ब्राह्मण ने सुख पूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह रात उस ब्राह्मण के घर बिताई। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी की ओर यात्रा प्रारंभ की। ताम्रपर्णी नदी के तट पर नए त्रिपति नामक स्थान में भगवान विष्णु के 9 मंदिर थे। महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्चा विग्रह देखे और वहां विचरण किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तीर्थकला नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्चा विग्रह देखे। तब वे तिलकांची गए, जहां उन्होंने शिवजी का मंदिर देखा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्षण नामक तीर्थ स्थान गए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। फिर वे पानागढ़ी नामक पवित्र स्थल पर आए, जहां उन्होंने भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के अर्चा विग्रह देखे। बाद में महाप्रभु चामतापुर गए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के अर्चा विग्रह के दर्शन किए। इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहां भगवान विष्णु का मंदिर देखा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी केप केमोरिन नामक स्थान की मुलाकात ली। कन्याकुमारी देख चुकने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अमलीतल आए, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। तत्पश्चात वे मल्लार देश गए, जहां भट्टधारी जाति के लोग रहते थे। मल्लार देश घूमने के बाद महाप्रभु तमाल कार्तिक गए और वहां से वेतापनी गए। वहां उन्होंने रघुनाथ अर्थात रामचंद्र का मंदिर देखा और वहीं रात बिताई। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक था, जिसका नाम कृष्णदास था। वह ब्राह्मण था, किंतु वहां उसकी भेंट भट्टधारियों से हो गई। भट्टधारियों ने ब्राह्मण कृष्णदास को स्त्रियों के माध्यम से लोभ में फंसा लिया, क्योंकि वह सरल एवं भला आदमी था। उन्होंने अपनी बुरी संगति से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। भट्टधारियों से पुतलाया हुआ कृष्णदास प्रातः काल उठते ही उनके घर गया और महाप्रभु भी उसे ढूंढने के लिए तेजी से वहां गए। भट्टधारियों के पास आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे ब्राह्मण सहायक को अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? मैं तो सन्यासी हूँ और तुम लोग भी हो, फिर भी तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहे हो। मुझे इसमें कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर सारे भट्टधारी सभी दिशाओं से अपने अपने हाथों में हथियार लिए हुए महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े आए, किंतु उनके हथियार उनके हाथों से छूट कर गिर पड़े और उन्हीं के शरीरों पर जा लगे। इस तरह जब कुछ भट्टधारी कट कर टुकड़े टुकड़े हो गए तो अन्य लोग चारों दिशाओं में भाग गए। जब भट्टधारी जाति में चीख चित्कार मच गई तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के बाल पकड़कर उसे बाहर ले आए। उसी रात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका सहायक कृष्णदास पयस्विनी नदी के तट पर आए। उन्होंने स्नान किया और फिर वे आदि केशव का मंदिर देखने गए। आदि केशव मंदिर को देखते ही महाप्रभु बाबा विष्ट हो गए। वे विविध नमस्कार तथा स्तुतियां करके कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। वहां के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महाप्रभु का अच्छे से सत्कार किया। आदि केशव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। वहां रहते हुए उन्हें ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु इस शास्त्र का एक अध्याय प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे और उनके शरीर में कंप, अश्रु, पसीना, समाधि तथा प्रसन्नता के भाव रूपी विकार प्रकट हो आए। जहां तक अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों का संबंध है, ब्रह्म संहिता के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है। निसंदेह यह शास्त्र भगवान गोविंद की महिमाओं का परम प्रकाश है, क्योंकि यह उनके विषय में सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करता है। क्योंकि सारे सिद्धांत ब्रह्म संहिता में संक्षेप में दिए हैं, अतएव यह सारे वैष्णव ग्रंथों का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यत्न पूर्वक ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि उतारी और बाद में वे हर्षित होकर अनंत पद्मनाभ नामक स्थान गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत पद्मनाभ में 2-3 दिन रहे और उन्होंने वहां का मंदिर देखा। फिर हर्ष पूर्वक वे श्री जनार्दन मंदिर देखने गए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जनार्दन में 2 दिन तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे। फिर वे पयस्विनी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने शंकर नारायण का मंदिर देखा। वहां उन्होंने श्रृंगेरी मठ देखा जो शंकराचार्य का निवास है। फिर उन्होंने मत्स्य तीर्थ देखा और तुंग भद्रा नदी में स्नान किया। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विह्वल हो उठे। उडुपी मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल के अतीव सुंदर अर्चा विग्रह के दर्शन किए। यह विग्रह मध्वाचार्य के स्वप्न में आए थे। मध्वाचार्य ने कृष्ण का यह विग्रह उस गोपी चंदन के ढेर से किसी न किसी तरह प्राप्त किया जो नाव में लाया गया था। मध्वाचार्य इस नर्तक गोपाल के विग्रह को उडुपी ले आए और उन्होंने उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। मध्वाचार्य के अनुयायी अर्थात तत्ववादी गण आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का यह सुंदर रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। वे देर तक बाबा वेश में नृत्य तथा कीर्तन करते रहे। पहले तो तत्ववादी वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी समझा, अतएव उन्होंने उनसे बात नहीं की। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को बाबा वेश में देखकर वे लोग चकित रह गए। तत्पश्चात उन्हें वैष्णव जानकर उन्होंने उनका अच्छा स्वागत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि तत्ववादियों को अपने वैष्णव होने पर अत्यधिक गर्व है, अतएव वे मुस्काए और उनसे बातें करने लगे। उन्हें अत्यंत गर्वित जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शास्त्रार्थ शुरू किया। तत्ववादियों का मुख्य आचार्य शास्त्रों में अत्यंत पटु था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनीत भाव से उससे प्रश्न किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि को ठीक से नहीं जानता। कृपया मुझे बतलाएं कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। आचार्य ने उत्तर दिया, जब चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कार्य कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं तो वे ही सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं जिनसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के कार्य कृष्ण को समर्पित करता है तो वह पांच प्रकार की मुक्ति का पात्र होता है और वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन श्रवण तथा कीर्तन है। इस विधि में श्रवण कीर्तन भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं तथा पार्षदों का स्मरण, देश काल तथा पात्र के अनुसार सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, स्तुति करना, अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास समझना, उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न करना और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना सम्मिलित हैं। जब इस तरह कृष्ण की नौ प्रकार से सीधी प्रेममयी सेवा की जाती है तो वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, यही प्रामाणिक शास्त्रों का मत है। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन नौ विधियों से कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है तब उसे सिद्धि का पांचवा पद एवं जीवन के लक्ष्य की सीमा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है तब वह उत्तेजित होकर जोर जोर से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। वह किसी की परवाह न करते हुए हंसता है, रोता है, शोभित होता है और पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करता है। प्रत्येक प्रामाणिक शास्त्र सकाम कर्म की निंदा करता है। सभी जगह यही उपदेश दिया गया है कि सारे सकाम कर्मों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक शास्त्रों में नियत कर्मों का वर्णन किया गया है। उनकी विवेचना करने पर मनुष्य उनके गुणों तथा दोषों को पूरी तरह समझ सकता है और तब भगवान की सेवा करने के लिए उनका पूर्ण परित्याग कर सकता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह प्रथम कोटि का व्यक्ति उत्तम कहलाता है। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। जब तक मनुष्य सकाम कर्म द्वारा तृप्त नहीं होता और श्रवणम कीर्तनम विष्णोह द्वारा भक्ति के लिए रुचि विकसित नहीं कर लेता तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। शुद्ध भक्त मुक्ति के पांच प्रकारों को त्याग देते हैं। निसंदेह उनके लिए मुक्ति अत्यंत नगण्य है क्योंकि वे इसे नरक के समान मानते हैं। शुद्ध भक्त सदैव पांच प्रकार की मुक्ति का बहिष्कार करते हैं। ये हैं
वैकुंठ लोक में रहना, भगवान जैसे ऐश्वर्यों से युक्त होना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की संगति करना तथा भगवान के शरीर में समा जाना। शुद्ध भक्त भगवत भक्ति के बिना इन वरदानों को स्वीकार नहीं करते। भौतिक ऐश्वर्य, भूमि, संतान, समाज, मित्र, धन, पत्नी या लक्ष्मी के आशीर्वादों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी प्रार्थित हैं। किंतु राजा भरत को ऐसी वस्तुओं की कामना नहीं थी और यह उनके पद के अनुरूप भी था, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त के लिए जिसका मन सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मुक्ति या भगवान से तादात्म्य भी तुच्छ है, तो फिर भौतिक अवसरों के विषय में तो कहना ही क्या। भगवान नारायण का भक्त नरक से नहीं डरता, क्योंकि वह इसे स्वर्ग जाने या मुक्ति के ही समान मानता है। भगवान नारायण के भक्त इन वस्तुओं को एक सा ही मानने के अभ्यस्त होते हैं। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादी आचार्य से कहते रहे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। आपने विधि, साधन तथा चरम लक्ष्य साध्य का सही सही वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय का आचार्य अत्यधिक लज्जित हो गया। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तत्ववादी आचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह सत्य है, यही सारे प्रामाणिक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है। तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं, हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिखते हैं। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वह यही है कि आप लोग भगवान के अर्चा विग्रह को सत्य रूप मानते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादियों के गर्व को चूर चूर कर दिया। तब वे फल्गु तीर्थ गए। माता शची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु तब त्रित्कूप गए और वहां पर विशाला अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद वे पंचापसरा नामक तीर्थ स्थान गए। पंचापसरा की मुलाकात लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोकर्ण गए। वहां उन्होंने शिवजी का मंदिर देखा और फिर द्वैपायनी गए। तब सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु सुरपारक तीर्थ गए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कोलापुर नामक नगर गए, जहां उन्होंने क्षीर भगवती के मंदिर में लक्ष्मी जी को और चोर पार्वती नामक अन्य मंदिर में लांग गणेश के दर्शन किए। वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर गए, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विट्ठल ठाकुर का मंदिर देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह कई प्रकार से नृत्य और कीर्तन करने लगे और एक ब्राह्मण उन्हें बाबा वेश में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इस ब्राह्मण ने अतीव सम्मान सहित तथा प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया। भोजन करने के बाद महाप्रभु को शुभ समाचार मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला कि श्री माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य श्री रंगपुरी उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर उपस्थित हैं। यह समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्री रंगपुरी को मिलने उस ब्राह्मण के घर गए। प्रवेश करते ही महाप्रभु ने उन्हें वहां बैठे देखा। श्री रंगपुरी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भूमि पर दंडवत घेरकर बाबा वेश में प्रणाम किया। उनके शरीर में अश्रु, हर्ष, कंपन तथा स्वेद, पसीने के दिव्य विकार लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे बाबा वेश में देखकर श्री रंगपुरी ने कहा, हे श्रीपाद कृपया उठें। हे श्रीपाद, आप श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं, जिनके बिना प्रेमानंद की कोई सुगंध नहीं होती। यह कहकर श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते समय दोनों भाववश रुदन करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया तो वे शांत हुए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगपुरी से ईश्वरपुरी के साथ अपने संबंध के विषय में बतलाया। वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से अप्लावित हो उठे। अंत में दोनों बैठ गए और आदर पूर्वक बातें करने लगे। इस तरह वे दोनों लगातार 5-7 दिनों तक कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा करते रहे। श्री रंगपुरी ने उत्सुकतावश चैतन्य महाप्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा तो महाप्रभु ने बतलाया कि नवद्वीप धाम उनका जन्म स्थान है। पहले श्री रंगपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप जा चुके थे, अतएव उन्हें वहां हुई घटनाएं याद आ गई। नवद्वीप का नाम सुनते ही श्री रंगपुरी को स्मरण हो आया कि वे माधवेंद्रपुरी के साथ जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया था। यहां तक कि उन्हें केले के फूलों की बनी सब्जी का अद्वितीय स्वाद भी याद आ गया। श्री रंगपुरी को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी भी याद आई। वे अत्यंत समर्पित तथा पतिव्रता थी। वात्सल्य में तो वे जगन माता तुल्य थी। उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता भोजन बनाने में कैसी निपुण थी। उन्हें स्मरण हो आया कि वे सन्यासियों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी और उन्हें अपने पुत्रों के समान भोजन कराती थी। श्री रंगपुरी यह भी जानते थे कि उनके एक योग्य पुत्र ने कम वय में ही संन्यास ले लिया था। उसका नाम शंकरारण्य था। श्री रंगपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि इसी तीर्थ पांडरपुर में शंकरारण्य नामक सन्यासी ने सिद्धि प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे पूर्व आश्रम में शंकरारण्य मेरा भाई था और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें करने के बाद श्री रंगपुरी द्वारका धाम के लिए रवाना हो गए। श्री रंगपुरी के द्वारका गमन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पांडरपुर में उस ब्राह्मण के घर 4 दिनों तक और रहे। उन्होंने भीमा नदी में स्नान किया और विट्ठल मंदिर का दर्शन किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वीणा नदी के किनारे गए, जहां उन्होंने अनेक तीर्थ स्थल तथा विभिन्न देवों के मंदिर देखे। वहां के ब्राह्मण समाज में सभी शुद्ध भक्त थे, जो नियमित रूप से बिल्लव मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ का अध्ययन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण करणामृत पुस्तक सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से उसकी नकल करवाई तथा उसे अपने साथ लेते गए। तीनों लोकों में कृष्ण करणामृत की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण करणामृत को पढ़ता है वह भगवान कृष्ण के सौंदर्य तथा उनकी लीलाओं के मधुर स्वाद को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण करणामृत नामक दो पुस्तकों को अत्यंत मूल्यवान रत्न मानते थे। अतएव अपनी वापसी यात्रा में वे इन्हें अपने साथ ले आए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तापी नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान करने के बाद वे माहिष्मतिपुर गए। वहां रहते हुए उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थानों को देखा। इसके बाद महाप्रभु धनुष तीर्थ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्वंध्या नदी में स्नान किया। तत्पश्चात वे ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे और वहां से दंडकारण्य चले गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडकारण्य जंगल के भीतर सप्तताल नामक स्थान देखा। वहां के ताड़ के साथ वृक्ष अत्यंत पुराने, मोटे तथा ऊंचे थे। सात ताड़ वृक्षों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया। फल स्वरूप वे वृक्ष वैकुंठ लोक वापस चले गए। जब सातों ताड़ के वृक्ष वैकुंठ लोक चले गए तो वहां के सारे लोग चकित रह गए। तब वे कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु नामक यह सन्यासी अवश्य ही भगवान रामचंद्र के अवतार हैं। केवल भगवान रामचंद्र में सप्ततालों को वैकुंठ लोक भेजने की शक्ति है। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु पंपा नामक सरोवर आए, जहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वे पंचवटी गए, जहां उन्होंने विश्राम किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु नासिक गए, जहां उन्होंने त्र्यंबक शिव जी का दर्शन किया। तब वे ब्रह्मगिरी गए और फिर गोदावरी के उद्गम स्थान उषावर्त गए। अनेक तीर्थों की मुलाकात लेने के बाद महाप्रभु सप्त गोदावरी गए। अंत में वे विद्यानगर लौट आए। जब रामानंद राय ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत ही उन्हें मिलने गए। जब रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए दंडवत गिर पड़े तो महाप्रभु ने तुरंत उन्हें उठा लिया और उनका आलिंगन किया। वे दोनों बाबा विष्ट होकर रोने लगे और इस तरह उनके मन शिथिल पड़ गए। कुछ समय के बाद दोनों होश में आए और वे एक साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर बातें करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को तीर्थ स्थानों की यात्रा का सुंदर विवरण सुनाया और उन्हें बतलाया कि उन्होंने कृष्ण करणामृत तथा ब्रह्म संहिता नामक दो ग्रंथ किस तरह प्राप्त किए। महाप्रभु ने दोनों पुस्तकें रामानंद राय को दे दी। महाप्रभु ने कहा, आपने मुझसे भक्ति के विषय में जो कुछ कहा है उसकी पुष्टि इन दोनों पुस्तकों से होती है। इन पुस्तकों को पाकर रामानंद राय अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने महाप्रभु के साथ मिलकर इनका रसास्वादन किया और दोनों की एक प्रतिलिपि तैयार कर ली। विद्यानगर गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने की खबर फैल गई और सारे लोग एक बार फिर उनके दर्शन के लिए आए।
यहाँ पर एकत्र लोगों को देखकर श्री रामानंद राय अपने घर चले आए। दोपहर में श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए उठे। रामानंद राय रात्रि में फिर आए और वे तथा चैतन्य महाप्रभु दोनों कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करते रहे। उन्होंने इसी तरह रात बिताई। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे। इस तरह उन्होंने बड़े ही आनंद में 5-7 दिन बिता दिए। रामानंद राय ने कहा, हे प्रभु, आपकी अनुमति से मैं विनय पूर्वक राजा को एक पत्र लिख चुका हूँ। राजा ने मुझे जगन्नाथपुरी लौट जाने का आदेश दे दिया है और मैं वापस जाने का प्रबंध कर रहा हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं केवल इसी कार्य के लिए यहाँ लौट कर आया हूँ। मैं आपको अपने साथ जगन्नाथपुरी ले चलना चाहता हूँ। रामानंद राय ने कहा, हे प्रभु, अच्छा यही होगा यदि आप जगन्नाथपुरी अकेले जाएं, क्योंकि मेरे साथ अनेक घोड़े, हाथी तथा सैनिक होंगे जिनके कारण बहुत कोलाहल मचता रहेगा। मैं 10 दिनों में सारी तैयारी कर लूंगा। मैं जल्दी ही आपके पीछे पीछे नीलाचल आऊंगा। रामानंद राय को नीलाचल आने की आज्ञा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे उसी से लौटे और सारे वैष्णव जन रास्ते में उन्हें फिर से मिले। जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते श्री हरि के नाम का उच्चारण होता, यह देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। आलाल नाथ पहुंचकर महाप्रभु ने अपने सहायक कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु तथा अन्य निजी संगियों को बुलाने के उद्देश्य से आगे भेज दिया। ज्यों ही नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर सुनी त्यों ही वे तुरंत उठकर उन्हें मिलने चल दिए। वे महान भाव के कारण अत्यंत अधीर हो उठे। आनंद के मारे श्री नित्यानंद राय, जगदानंद, दामोदर पंडित तथा मुकुंद भाव विभोर हो उठे और वे रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने गए। गोपीनाथ आचार्य भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में गए। वे सब महाप्रभु से मिलने गए और अंत में रास्ते में ही उन सब की भेंट हो गई। महाप्रभु भी प्रेमवश हो गए और उन्होंने सबका आलिंगन किया। वे सभी प्रेमवश आनंदित होकर रोने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होकर महाप्रभु से मिलने गए और उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यधिक प्रेमावेश में रोने लगे। तब महाप्रभु सबके साथ जगन्नाथ मंदिर गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय प्रेमावेश के कारण कंपन, वेद, अश्रु तथा पुलक से महाप्रभु का शरीर आप्लावित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश के कारण नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। उस समय सारे पांडे तथा पुजारी उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा माला देने आए। भगवान जगन्नाथ की माला तथा प्रसाद पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हुए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवक बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में काशी मिश्र आए और वे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने बड़े ही आदर से उनका आलिंगन किया। तब
सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने साथ अपने घर यह कह कर ले गए, आज आप मेरे घर में भोजन करेंगे। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को आमंत्रित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान जगन्नाथ द्वारा छोड़े गए विविध प्रकार के प्रसाद ले आए। वे अनेक प्रकार के पकवान तथा औटे दूध की बनी वस्तुएं ले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और वहां दोपहर का भोजन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें विश्राम के लिए शयन कराया और स्वयं उनके पांव दबाने लगे। तब महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, जाकर भोजन करें। और महाप्रभु उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस रात्रि उन्हीं के घर रुके। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ रहे। वे सारी रात महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनते हुए जगते रहे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, किंतु कहीं भी आप जैसा वैष्णव नहीं देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, रामानंद राय की बातों से मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, इसीलिए मैंने आपसे विनती की थी कि आप उनसे अवश्य मिलें। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वर्णन संक्षेप में पूरा किया है, इसे और विस्तार से नहीं बतलाया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उनके कार्यकलापों का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी लोभवश मैंने चेष्टा की है, इससे मेरी निर्लजता ही प्रकट होती है। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है, वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करता है। कृपया श्रद्धा तथा भक्ति के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। सब लोग भगवान से ईर्ष्या करना छोड़कर भगवान के पवित्र नाम हरि का कीर्तन करो। इस कलियुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए हैं। यही सभी बातों का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति हैं, उनमें प्रवेश कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो समुद्र तट पर खड़े होकर केवल जल का स्पर्श कर रहा हूँ। जितना अधिक कोई श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, उतना ही अधिक वह भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के नवम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राओं का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।